ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ لیلت القدر کی صورت میں رمضان میں دیا. یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلت القدر آخری 10 راتوں میں، جو ان میں ثواب کی طلب کی نیت سے قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. یہ بڑی ہی مبارک رات ہے، ایسی رات جس کے بارے میں قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل ہوئی سورت القدر کے نام سے. سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا تحفہ دیا جو اس کی بہت بڑی رحمت ہے. پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، کئی 100 سال جیتے تھے، اور ظاہر ہے پھر ان کی نیکیاں بھی اس کے مطابق ہی ہوتی تھیں. لیکن یہ امت چونکہ اتنی لمبی عمر نہیں پاتی، تو یہ ہو سکتا تھا کہ ان کی نیکیاں کم ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کمی کو پوری کرنے کے لیے ہر سال رمضان میں ایسی رات رکھ دی کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلت القدر، لیلت القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی اس قرآن کو. قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا مطلب ہے، پہلا مطلب، بڑا کسی چیز کا کوئی بڑی شان ہونا، بڑی عظمت ہونا، بہت شرف ہونا. تو یہ رات بہت عظیم و شان رات ہے، بہت شرف والی، عزت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے. جیسے ہم بھی قدر کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی قدر و منزلت، تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. دوسرا قدر کا معنی ہے تنگی، یعنی اس رات میں اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے. اور کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جتنے زمین کے اوپر پتھر ہیں ان کی گنتی سے بھی زیادہ، سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ. تو امیجن کریں کہ کتنے فرشتے ہوں گے کہ زمین تنگ پڑ جائے ان کے لیے. یعنی زمین حالانکہ کتنی بڑی ہے، لیکن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی جگہ نہیں رہتی، اتنے فرشتے ہوتے ہیں. ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں یہ آ کے؟ یہ بھی آج ہم بات کریں گے. اور اس سے پہلے میں آپ کو قدر کی اور باتیں بتا دوں کہ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قدر جس کو ہم کہتے ہیں، بس قدر میں یہی لکھا تھا، تقدیر، کہ ہر جو اہم فیصلہ ہے وہ اس رات میں ڈیلیگیٹ کر دیا جاتا ہے فرشتوں کو. اسی لیے آپ دیکھیں، ہم اس میں اسی صورت میں دیکھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر اہم کام کو لے کر وہ اترتے ہیں. یعنی یہ اہم جو کام ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی کمپنی میں प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं, असाइन कर दिया जाता है, आपने ये प्रोजेक्ट करना है, आपने ये करना है, और कोई हफ्ते का है, कोई महीने का है, तो पूरे साल का असाइनमेंट या प्रोजेक्ट फरिश्तों को दे दिया जाता है, हर हर बंदे के हवाले से, किसकी मौत है, किसको बीमारी आ जानी है, किसके औलाद होनी है, किसका निकाह होना है, सब फैसले बहुत अहम फैसले हैं। तो ये एक फैसलों की रात भी कहा जा सकता है इसको। अगर हम इस तरह से इसको देखें तो फिर हमें कितनी ज्यादा दुआ करनी चाहिए इन रातों में, क्योंकि इनमें से ही कोई रात लैलतुल कदर है। तो अपने पूरे साल की खैर के लिए और पूरे साल में चीजों के शर से बचने के लिए इसमें दुआएं की जाएं। फिर इसका एक और माना ये भी है कि ये वो रात है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, इसीलिए यहां पे है इन्ना अनजलना हु फी लैलतुल कद्र, हमने इसको नाजिल किया यानी कुरान करीम को। और एक पांचवा माना इसका ये है कि जो इस रात में इबादत करता है उसकी भी कद्रो मंजिलत अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी ये खुद भी ऐसी रात है जो बड़ी शर्फ वाली है, और ये उसको भी शर्फ दे देती है जो इसमें इबादत करे। और वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता ये रात कितनी कद्रो मंजिलत वाली, कितनी अजमत वाली, कितनी बड़ी रात है ये। आप जैसे किसी को समझाने लगते हैं ना तो आप कहते हैं तुम्हें क्या पता मदीना क्या शहर है, तुम्हें क्या पता वहां की रौनकें क्या हैं, तुम समझ नहीं सकते। जिसने ना देखा हो तो उसको नहीं उस तरह से समझ आ सकती। तो इस रात को इंसान समझ नहीं सकता पूरी तरह से, इतनी अजमत है इसमें, खैर ही खैर है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो इसकी खैर से महरूम हो गया वो असल महरूम है, उसकी तो बदबख्ती का क्या कहने, वो सारी खैर से ही महरूम हो गया जो इसकी तरफ तवज्जो ही ना करे। तो इतने फरिश्ते उतर के इस रात में अपने अपनी अपनी जगहों पर, यानी जमीन में हर तरफ फैल जाते हैं, और इनमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हैं। तनज्जलुल मलाइकतु वर्रूह, रूह से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। ये वो फरिश्ता है जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा मकाम रखता है। इनका दुनिया में आना अब बंद हो चुका है क्योंकि ये वही लाने पर मामूर थे, अब जब वही नहीं आएगी तो इनका आना भी नहीं है, सिवाय इस रात के। पूरे साल में ये एक रात है जिसमें ये उतरते हैं खुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इसीलिए इस रात में सलामती सलामती सलाम उन्हीं हत्ता मतलाए फजर, ये फजर तक रात चलती है और इसमें सलामती है, खैर है सारी रात के अंदर। अब ये कौन से फरिश्तों को लेकर उतरते हैं? क्या ये फरिश्ते जो कोई भी फरिश्ते हैं या कोई खास फरिश्ते हैं जिन जिस टीम को लेकर ये आते हैं? तो हमें पता चलता है हजरत काब से जो रिवायत है कि सिदरतुल मुंतहा के जो फरिश्ते हैं वो इनके साथ उतरते हैं। सिदरतुल मुंतहा, जैसे कि आप जानते हैं, सातवें आसमान की हद पे जन्नत से अटैच्ड समझ लें कि एक जगह है, और उसकी बुलंदी जन्नत में है, उसकी शाखें, उसकी डालियां अल्लाह ताला की कुर्सी के नीचे हैं, और इसमें इतने फरिश्ते हैं, जिसको कहेंगे बेरी का दरख्त कह सकते हैं, लेकिन आप दुनिया में तो इसको इमेजिन कर ही नहीं सकते ना कि क्या चीज है। तो ये जो सिदरातुल मुंतहा है इस पे इतने फरिश्ते हैं जिनकी गिनती को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, हर हर शाख पे बेशुमार फरिश्ते हैं, एक बाल के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जो फरिश्तों से खाली हो। और वहीं पे जिब्राइल अलैह सलाम का भी मकाम है उसके सेंटर में। और जब ये रात आती है तो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैह सलाम को आवाज देते हैं कि ए जिब्राइल, लैलतुल कदर में इस दरख्त के तमाम फरिश्तों को लेके जमीन पे उतर जाओ। अब ये जितने भी फरिश्ते हैं इनमें कोई अजाब वाला फरिश्ता नहीं, सारे वो फरिश्ते हैं जो रहमत वाले हैं, और ऐसे फरिश्ते हैं जिनके दिलों के अंदर मोमिनों के लिए बड़ी मोहब्बत है। लिहाजा सूरज के गुरूब होते ही ये सारे फरिश्ते जिब्राइल अलैह सलाम के साथ जमीन पे आते हैं और फैल जाते हैं। अब करते क्या है यहां पे आके, इनका काम क्या है कि हर हर जगह पे जो कोई बंदा सजदे में है, कयाम में है, अल्लाह के जिक्र में है, मर्द है या औरतें हैं, या दुआएं मांगने में मशगूल है, ये उनको नोट करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। तो चप्पे चप्पे पे घूमते हैं, अगर हाँ जहां पे शिर्क होता है वहां पे नहीं जाते, जहां पे कोई नशा करने वाला शख्स होता है या नशा करने वाली चीजें होती हैं, या जहां पे बुत वगैरह होते हैं ऐसी जगहों पर जाते हैं, या जहां पे गंदगी होती है, आपको पता है गंदगी की जगहों पे तो शयातीन ही जाते, यहाँ पे कूड़ा करकट वगैरह डाला जाता है वहां नहीं जाते। और जिब्राइल अलैह सलाम मोमिनों से हैंडशेक भी करते हैं, तो लिहाजा ही बड़ी ही कदरों मंजिलत वाली रात है। इसी वजह से हमारे असलाफ का तरीका ये था कि ये जो रातें हैं 10 रातें हैं, हर रात मगरिब और इशा के दरमियान गुसल करते थे और सबसे अच्छे कपड़े पहना करते थे, खुशबू लगाया करते थे। उनमें से एक से जब पूछा गया कि आप इतनी अच्छी खुशबू और बेहतरीन अपना लिबास क्यों निकाल के पहनते हैं, तो फरमाया इसलिए कि जिब्राइल अलैह सलाम आ रहे हैं, तो मैं क्या सबसे अच्छे कपड़े ना पहनूं कि उनसे मुलाकात होनी है। तो हम भी कभी ये सोच के बैठते हैं कि फरिश्तों के सरदार से मुलाकात का मौका आ रहा है, वो जो अल्लाह ताला के हाँ अमीन फरिश्ते हैं, वो फरिश्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाने के काम पे मामूर थे, वही फरिश्ता जो कुरआन करीम अल्लाह ताला से पास से लेकर और ज़मीन पे उतरा, वो फरिश्ता मुझसे मुलाकात करेगा। लिहाजा अच्छा लिबास, साफ सुथरा लिबास, नहा धो के साफ सुथरे होके बैठे, फरिश्तों को गंदगियां नहीं पसंद, बदबू नहीं पसंद, तो लिहाजा इसका एहतमाम किया जाए, इसकी तैयारी की जाए, इसको अहम समझा जाए। हमने किसी वीआईपी से मुलाकात करनी हो तो हम उसकी कितनी तैयारी करेंगे, या गंदे मंदे ही चले जाएंगे? हमारे दांत, हमारे बाल, हमारा जिस्म पाक साफ हो, हम जहां बैठे हैं वो जगह पाक साफ हो कि हमारे मेहमान आने वाले हैं। इन्हीं रातों में कोई तो रात ऐसी है, और अपने घर में कोई ऐसी चीज ना रखी हो हमने जो इनको दूर करते। आपको पता है जहां पे तस्वीरें लटकी होती हैं उन जगहों पर फरिश्ते नहीं आते, रहमत के फरिश्ते वहां पे दाखिल ही नहीं होते, जहां पे कुत्ता होता है वहां पे नहीं आते। तो इसलिए ऐसी चीजों को अपने घरों से दूर किया जाए। तो ये फरिश्ते बड़े ही मुआज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, बड़े ही खैरख्वाह फरिश्ते हैं, ये वो फरिश्ते हैं कि आमीन कहने आ रहे हैं आपकी दुआओं पर, ये वो फरिश्ते हैं जो आपके लिए भी दुआएं मांगते हैं, ये मोमिन मर्दों के लिए, मोमिन औरतों के लिए रहमत की दुआएं मांगते हैं और खुद उनकी गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। अल्लाहु अकबर, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, ये फरिश्ते की दुआएं पाले कोई, ये जो अल्लाह ताला की कभी भी नाफरमानी नहीं करते। और फिर ये रिपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं दूसरे फरिश्तों को बताते हैं कि हमने क्या क्या देखा, क्योंकि उनको नहीं मालूम, फरिश्ते गैब का इल्म नहीं रखते। जो आसमानों पे फरिश्ते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि मोमिन लोग कैसे हैं, क्या कर रहे थे। उनको मोहब्बत है उन लोगों से जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं और जो उसकी फरमाबरदारी में खड़े हैं और जो उसको राजी करने के लिए खड़े हैं। हमारा बहुत सारा वक्त फजूल चीजें ले लेती हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये रातें बड़ी कीमती हैं, ये दिन बड़े कीमती हैं, और दिनों से ज्यादा रातें तो बहुत ही कीमती हैं। लिहाजा इनको गपशप में, इधर उधर बातचीत करने में, इधर उधर टेक्सिंग करने में, कोई चीजें देखने में, इसमें ना गुजारें। मैं पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुकी हूँ कि देखिए, हम समझते हैं कि शायद सिर्फ जागना ही एक बड़ी कामयाबी हो गई, ये हमने जाग लिया। नहीं, जागना नहीं, इबादत करने की असल बात है। ये कौन है जो इबादत कर सका। और आप अगर एतकाफ नहीं भी बैठते, और जरूरी नहीं कि सब लोग एतकाफ बैठ सकें, जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में एतकाफ किया करते थे, और उसकी भी गर्ज यही थी कि लैलतुल कद्र को पालें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी 10 रातों में जागा करते थे और अपनी फैमिली को भी जगाते थे। तो आप इतकाफ नहीं भी कर सकें तो अलग तो हो सकते हैं, तन्हाई तो इख्तियार कर सकते हैं, कि हमारे मजहब में रहमानियत नहीं है, लेकिन इन रातों में तन्हाई इख्तियार करें और इबादत करें, इस पे फोकस हो। अकलमंद वही है जो इन रातों से फायदा उठा ले, वरना ये तो गुजर ही जाएंगी। आप सो के गुजार दें, या आप खेलकूद में गुजार दें, या आप और मशगलों में गुजार दें, अगर इबादत ना की तो चाहे जागे भी रहे कोई फायदा नहीं है। आज के दौर में एक फितना हमारे, हाँ, बहुत बड़ा ये भी है, कह सकते हैं कि शैतान ने इस तरह से इंसानों को अपने जाल में फंसाया हुआ है कि वो जहन को इतना मसरूफ कर देता है, हमारा जहन इतना ऑक्यूपाइड रहता है कि कम ही तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होती है। इवन जब हम जिक्र भी कर रहे होते हैं तो जहन भटक रहा होता है, किसी पल चैन नहीं है, मिनट मिनट में फोन उठा के देखेंगे किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। हालात हाजरा क्या चल रहे हैं, एक इस चीज ने भी हमें बहुत मसरूफ कर दिया। हम हर वक्त खबरें ही देखते रहे, क्या हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है कि वो हो रहा है, इस चीज ने हमारा बहुत सारा वक्त ले लिया, हमारी सोच फोकस्ड रहती ही नहीं। याद रखें, इंसान की जो समात है और जो बसारत है, ये दिल के चैनल्स हैं, समझ लें, दिल की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। अब आंखें अगर मसरूफ हैं, हर वक्त स्क्रीन के ऊपर ही मसरूफ है, कभी फोन है, कभी आईपैड है, कभी कंप्यूटर है, कभी टीवी है, इवन आप तो गाड़ियों तक में टीवी है, कभी ड्रामे हैं, कभी सोशल मीडिया है, कभी हालात हाजरा के प्रोग्राम है, इंसान इन्हीं में लगा रहेगा तो यहीं से फिर दिल तक बातें जाती हैं, दिल फिर भरा रहता है इन्हीं चीजों से, तभी तो नमाजों में भी दिल नहीं लगता, तभी तो दुआ में भी फोकस नहीं हो पाते हम, तभी जिक्र में भी वो लज्जत नहीं आती, क्योंकि जिक्र में सिर्फ जुबान लगी हुई है, जेहन कहीं और है, दिल कहीं और है, दुनिया की सैर में निकला हुआ। तो इसको फोकस करने की जरूरत है, और ऐसे नहीं हो सकता कि हम सारा वक्त इधर उधर की चीजों में मशगूल रखें अपनी आंखों को या अपने कानों को, और फिर सोचें कि हमारा दिल तो अल्लाह ताला की तरफ ही लगा रहे, ये नहीं होता। इसी तरह हमारी समात भी देखें, कान भी किस में बिजी रहते हैं, अगर कभी इसकी बातें उसकी बातें, नहीं तो आप देखें रमजान में फिर भी कोई लोग रुके होते हैं, गैर रमजान में म्यूजिक में, म्यूजिक भी दिल के ऊपर असर करता है, क्योंकि फिर एक दफा कोई बात सुनी हो तो कितनी देर उसका असर रहता है। फिर नमाज में भी ड्रामे के सीन ही याद आते हैं, फिर नहाते धोते भी लोगों के दिमाग में म्यूजिक चल रहा होता है, और जो म्यूजिक से हट जाते हैं फिर वो खबरों में मगन हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर दिल को अल्लाह ताला के साथ लगाना है तो इन रास्तों को साफ करना है, इन के ऊपर चेक बिठाना है, इन रास्तों से कोई ऐसी चीज ना अंदर जाए कि जिससे दिल पलूट हो जाए। आप गंदे बर्तन में डालते हैं कोई दूध या खाने पीने की चीज? नहीं डालते कभी भी। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत तो बड़ी पाक चीज है, उसकी याद तो बड़ी पाकीजा चीज है। आप सोचते हैं गंदे दिलों में उसकी याद आ जाएगी, उसकी मोहब्बत आ जाएगी? हम तो गंदे बर्तन में नहीं दूध डालते, और अल्लाह ताला का कलाम, उसकी याद, उसके लिए सोचते हैं कि दिल की सफाई की जरूरत नहीं। तो दिल जितना शफाफ होगा उतनी अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी याद, और उससे लौ लगेगी, उसकी कुर्बत हासिल होगी। वरना हम ऐसे ही बैठे रहेंगे महरूम ही। रमजान भी गुजर जाएगा तो कभी जहन इधर, कभी उधर, कभी उधर। तो फोकस करें, फोकस करना सीखें। जब हम ये प्रोग्राम करते हैं उसके बाद आप देखें आपके पास टाइम होता है, तन्हाई होती है, आप उसमें कितने भी आपने नफल पढ़ने हैं, कोई ये जरूरी नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई 20 पढ़ें या 30 पढ़ें या 50 नफल पढ़ेंगे तो 2 नफल भी खुशू के साथ पढ़ें, सजदे में जाएं तो बहुत देर सजदे में अपना सर रखें, महसूस करें कि आप किसके आगे झुके हुए हैं, और सुभान रब्बी अला जब कहें तो दिल से महसूस करें, वो दिल से निकले, और कभी नहीं भी बोल रहे खामोशी से अपना सर रखे छोड़े, और अल्लाह ताला से बात करें, दिल ही दिल में बातें करें, जाए कहें अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तूने मुझे इतना कुछ दिया है, जो भी मेरे पास है अल्लाह तेरा ही दिया हुआ है, तूने मुझे इतना नवाजा है इसके बावजूद कि मैं नाफरमान हूं, इसके बावजूद कि मैंने तेरी कदर वैसे नहीं पहचानी या अल्लाह जैसे तेरी कदर करनी चाहिए थी। या अल्लाह तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है, तेरे जैसा तो कोई भी नहीं यार अब, कि मेरी नाफरमानी के बावजूद तूने मुझे नेमतों से नवाजा हुआ, मुझे मोहलत दी भी है, मेरे ऊपर अपना करम किया हुआ है। आप देखिए जब आपका दिल अल्लाह ताला के साथ लगेगा ना, इतनी लज्जत आएगी कि अगर बादशाहों को पता चल जाए ना इस लज्जत का, तो वो आपसे इसको छीनने की कोशिश करें, ऐसी लज्जत है। लेकिन हमने इस लज्जत को कभी चखा नहीं होता, क्योंकि हमारे दिल कहीं, दिमाग कहीं, आंखें कहीं, कान कहीं, चैन से बैठते ही नहीं, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा खड़े हो रहे हैं, बस गिनती पे ज्यादा जोर है। अल्लाह ताला ने अहसन अमल देखना है, ये नहीं है कि आप बस गिनती पूरी कर रहे हैं कि हमने कितना पढ़ लिया, ठीक है बहुत पढ़े अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर अगर खुशू नहीं है, उसके अंदर अगर दिल ही नहीं लगा हुआ, ख्यालात भटक रहे हैं, तो कैसी नमाजें हैं ये? फिर भी पढ़ें, ये नहीं कहती कि अगर दिल नहीं लगता तो तब छोड़ दो, नहीं तब भी पढ़ें, मगर वापस अपने आप को लेकर आए। और जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना ये खैरुम मिन अल्फ शहर है, तो कितनी बेहतर है, 1,000 महीनों से बेहतर है, मगर कितनी बेहतर, 2,000 महीने बेहतर है, 4,000 महीने बेहतर है, 10,000 महीने बेहतर है, वो वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए जितना बढ़ा दे। तो हो सकता है कि किसी के अल्लाह ताला 10,000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर कर दे उसकी एक रात की इबादत, हो सकता है किसी के लिए 2,000 महीनों से, ये स्पेसिफिक बताया नहीं गया कितनी। अब जो जितनी ज्यादा इबादत करेगा, किसी ने हो सकता है कि खुशू के साथ लग के पूरी रात की हो, किसी ने सिर्फ 2 घंटे की हो, बाकी टाइम बस इधर उधर घूमता फिरता रहा हो, किसी ने 4 घंटे की होगी, किसी ने बेहतरीन की होगी सारी रात ही, तो हर एक के उसके मुताबिक किया जा रहा है ना। लेकिन ये याद रखें, जब हम 83 ईयर्स और 4 मंथ से ज्यादा की बात करते हैं, तो मसलन 10 घंटे की अगर रात है, तो 1 घंटा भी तकरीबन तकरीबन 8.5 साल के बराबर है, 8 साल से भी ऊपर की मुद्दत बनती है 1 घंटे की, इतना है, ये तो बराबर की बात आ रही है, इससे भी ज्यादा। अल्लाह हू अकबर, एक एक मिनट इसका कई कई दिनों के बराबर है। 1 मिनट, अगर 10 घंटे की रात है तो 1 मिनट 45 डेज के बराबर है, और 10 से ज्यादा घंटे की रात है तो इससे भी ज्यादा लगा ले। तो 1 मिनट भी आपने जाया कर दिया, तो आपने 1 महीने से भी ज्यादा ऊपर का टाइम जाया कर दिया। आप इतना ज्यादा अजर 1 मिनट में भी कमा सकते थे। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए समझें, इसको अहम समझें, इसकी अजमत को जानें, और फिर फोकस करने की कोशिश करें। ऐसे ही नहीं फोकस हो सकता, इसके लिए खुद को बांधना पड़ता है, एकदम नहीं फोकस हो जाएगा, अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। अब हम अगर YouTube पे बैठ गए तो एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक वीडियो आती जाएगी, और हम एक के बाद एक ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। चलो ये देख लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, इसी तरह रात गुजर भी जाती, फिर कहते हैं तो कुछ इबादत ही नहीं कर सके हम। तो इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि इन रातों को जाया करके इतने बड़े अजर को खो देना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मजराउल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है, ठीक है, जो यहां बोगे वही आखरत में काटोगे। आखरत में ऐसे ही दर्जे नहीं मिल जाने, अब वहां पे दर्जों का फर्क इंसान देखेगा तो पछताएगा कि हाँ मुझे भी मौका मिला था, मुझे भी इतनी जिंदगी मिली थी, भाई मैंने तो सारे मौके ही गंवा दिए, कहाँ से कहाँ आप दर्जे पा सकते हैं। तो इसलिए इन रातों में हर चीज से खुद को हटा लें, अपने दिमाग को फोकस कीजिए। अब आजकल बहुत ज्यादा ये बहस चल रही है, भाई कयामत करीब है, कयामत की निशानी होगी, कयामत चाहे आज आ जाए, चाहे 100 साल के बाद आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने उसके लिए तैयारी नहीं की। तो बात तो असल में तैयारी की है ना, तो लिहाजा हर वक्त इसी सोच में रहना, भाई कयामत आ रही है कि नहीं, कयामत की क्या निशानियां पूरी हो गई हैं, लो ये प्रोग्राम देख लें, ये, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या वाकई हम तैयारी कर चुके हैं कयामत की? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था, उसने कहा था कयामत कब आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके कि ये बताते कि तब आएगी जब ये निशानियां होंगी, ये निशान, आपने फरमाया तुम्हारी क्या तैयारी है। आप सोचिए ना, यही क्वेश्चन हमारे लिए, हमारी क्या तैयारी है, हमने क्या बना लिया। और वैसे तो हर एक शख्स की मौत ही उसकी कयामत है, मौत कल आ जाए तो फिर हमें कयामत की क्या परवाह, चाहे 1,000 साल बाद आए, हमारी तो कयामत शुरू हो गई। लिहाजा इन चीजों से खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करें, इस रात को अहम समझें, और इसके अंदर एक एक लम्हे को अपने लिए बहुत बड़ा खजाना जानें जो आपके हाथ लग गया। ये रात बार बार नहीं आएगी, जब अगले साल आएगी पता नहीं हम होंगे या नहीं, और अगले साल जब आएगी तो हमारी सेहत की क्या हालत होगी ये नहीं हम जानते। वैसे भी जो अगले साल आएगी वो अगले साल के रमजान की रात होगी। इस रमजान की तो गुजर चुकी, जिसको जितनी ज्यादा रातें मिल गईं उसके तो नसीब खुल गए। ओ लिहाजा हम सब इस चीज के ऊपर फोकस करें। आप जैसे मैंने आपको यह हदीस बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन सहाबी से पूछा आपकी तैयारी क्या है, तो उन्होंने क्या फरमाया था कि मेरी कोई ज्यादा तो ऐसी तैयारी नहीं, बस ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया फिर उन्हीं के साथ होगे जिनसे मोहब्बत करते। तो देखें कि दिलों में किसकी मोहब्बत है, क्योंकि ईमान वाले जो हैं वो तो अल्लाह ताला से बेहद मोहब्बत करते हैं। सबसे शदीद मोहब्बत उनकी अल्लाह ताला के साथ होती है। युहिब्बून वल्लदीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। तो अपने दिलों का भी हम जायजा लें इन रातों में, क्योंकि उन्हीं के साथ हमने होना जिनसे हमारी मोहब्बत होगी। और अल्लाह ताला की मोहब्बत बुनियाद है इबादत की। जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी उतना ही इबादत के अंदर दिल लगेगा, उतना ही राजो नियाज करने का दिल करेगा। फिर आपको मेले ठेले पसंद नहीं आएंगे, या आप मस्जिदों में जाके खड़े हुए हैं और वहां पे इधर बातें हो रही हैं उधर बातें हो रही हैं, इस फूड ट्रक से ये लिया जा रहा है उससे वो लिया जा रहा है, कहीं खरीदारी शुरू हो गई है, कहीं स्टॉल पे किसी पे खड़े हुए हैं, कहीं पे अंदर गपशप हो रही है, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब इंसान को कोई हस्ती महबूब हो तो उसका दिल करता है कि उसके साथ तन्हा हो, बस कोई तीसरा ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बस सारा टाइम मेरे साथ लगे इसका। तो जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं ना, उनका भी दिल करता है कि अल्लाह ताला के साथ अकेले होके उससे बातें करें, इसकी भी लज्जत है। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, कि इसका अपना टेस्ट है। हर एक की मोहब्बत का कोई टेस्ट होता है ना, आपको माँ बाप से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है ना उसकी लज्जत अनोखी है। इसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए दुआ भी हमें सिखा दी, खुद ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी इला हुब्बका, ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा दे कि मेरा दिल तुझसे मोहब्बत करता ही रहे, दिल तेरे साथ लगा रहे। जिससे मोहब्बत होती है इंसान का दिल उसी की तरफ रहता है। आपको जिससे मोहब्बत होगी, जिन को आप देखें माओं को, उनका दिल किसके साथ लगा रहता है? अपनी औलाद के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत होती है। अब वो उसी का ख्याल रहता है। आपकी ये भी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा जाल हुब्बका हब्बा इलैया मिन नफ्सी, अल्लाह इतनी मुझे अपनी मोहब्बत दे कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा तुझसे मोहब्बत हो, वह अहली और अपने खानदान से भी ज्यादा, व मिनल मा इल बारिद और ठंडे पानी की मोहब्बत से, कि जो इंसान को बहुत प्यास लग रही हो, शदीद प्यास हो, उस वक्त ठंडे पानी का क्या मजा होता है, उस वक्त उसकी कितनी चाहत होती है, उससे भी ज्यादा या अल्लाह मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डालते। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिलों में हो। और याद रखिए मोहब्बत और खौफ में फर्क क्या है, पहले मोहब्बत होती है फिर खौफ आता है। कैसे? कि जिससे आपको बहुत मोहब्बत होती है ना, फिर उसके बाद इंसान को ये डर लगने लगता है कि हाय कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझसे रुख ना फेर ले, मुझसे ना खुश ना हो जाए, फिर ये सहा नहीं जाता, धड़का हर बात लगा रहता है कहीं ऐसा कुछ ना मैं कर दूं कि ये मुझसे नाराज हो जाए। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पहले आती है तो फिर खौफ भी आ जाता है। और हमें क्यों अल्लाह ताला से मोहब्बत होनी चाहिए, किस वजह से होनी चाहिए, वो सोचे। इसलिए कि हर चीज जो मेरे पास है, मेरी अपनी वजूद से लेकर जितना कुछ मेरे पास है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। देखिए, आपको कोई मसलन $1 मिलियन दे दे, घर बैठे ही दे दे, बहुत बड़ी दौलत आपको दे दी, आपने कुछ भी नहीं किया था, तो खुद ब खुद आपके दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत आ जाती है कि कितना अच्छा है, आप उसके गुण गाते रहते हैं। अल्लाह ताला ने तो सब कुछ दिया। आप कहेंगे मुझे तो $1 मिलियन नहीं मिला, तो $1 मिलियन से भी ज्यादा, मिलियन, 1 मिलियन क्या, 100 मिलियन से भी ज्यादा ये कीमती जिस्म जो दे दिया, इसके मोल कहीं लग नहीं सकता, इसको कहीं खरीद के ला नहीं सकते, और ये जिंदगी, ये सांसें जो दे दी, कोई दे नहीं सकता ये, और बगैर किसी मेहनत के, बगैर मांगे ही दिया हुआ। तो जो कुछ हमें नजर आता है और जो हमें नजर नहीं आता, सब कुछ तो उसने दिया। तो फिर ऐसे मालिक से क्यों ना मोहब्बत। सोचिए, आपको किसी का पता चल जाए कि वो बहुत सखी है और बिलियनियर है, और जो उससे कुछ मांगता है ना, उसको खाली नहीं लौटाता, तो यकीन ना आपको ऐसा शख्स जरूर पसंद आएगा कि भाई अच्छा है, ऐसा इंसान है। और अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा अता करने वाला है। फिर इससे, उससे मोहब्बत इसलिए भी होनी चाहिए कि वो इंसान से मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत इंसान से इसलिए कि उसने अपने हाथों से इसको पैदा किया है, और उसकी मोहब्बत की निशानी है ना कि वो चाहता है इंसान आग से बच जाए, निजात पा ले, बख्शिश पा ले। और हमें अगर पता चल जाए, कोई चाहे कितना ही दूर बैठा हुआ है, लेकिन कोई आके हमें बताए फलां को आपसे बड़ी मोहब्बत है, बहुत ही मोहब्बत है, तो खुद ब खुद आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला को अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है, और सारे कुरान में इसकी मिसालें हैं। तो फिर बंदों को अल्लाह ताला से जरूर मोहब्बत होनी चाहिए। हम कहेंगे हमारे ऊपर तो इतनी मुश्किल आई हैं, यकीन अल्लाह ताला को मेरे से तो मोहब्बत नहीं हो सकती। नहीं, कभी भी ऐसी बदगुमानी ना रखिए, इसलिए कि अगर ऐसा कोई गुमान, ऐसी नेगेटिव सोच कोई रखने की गुंजाइश रखता, तो वो अंबिया होते, क्योंकि उनके पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आई, वो सबसे ज्यादा सताए गए, उनको सबसे ज्यादा हार्ड सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े। तो मुश्किलात का आना ये माने नहीं रखता कि आप अल्लाह ताला के को प्यारे नहीं है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, या आपके ऊपर कोई आजमाइश का आना, ये इस बात की निशानी नहीं है कि अल्लाह ताला को आपकी कोई परवाह ही नहीं है। तो पैगंबरों को देखें, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के महबूब बंदे, लेकिन कितनी मुश्किलात से गुजरे, तो हमेशा ये सोच लिया करें, क्योंकि शैतान नेगेटिविटी डालता है, अल्लाह ताला को तो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, वरना देखो तुम्हारे पर ये हालात क्यों आते। नहीं, अल्लाह ताला को मोहब्बत है, और इसी वजह से ऐसे हालात भी आते हैं कि वो अपने बंदे को और करीब कर लेता है इनके जरिए, और पाक कर देता है। और जो कुरान करीम को सही समझ लेता है और उसमें गौर कर लेता है, वो फिर अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों में कभी भी अल्लाह ताला के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकता। और हमें अल्लाह ताला से इसलिए भी तो मोहब्बत होनी चाहिए कि वो हमारे गुनाहों को देख कर भी, जान कर भी, और हमारी ऊपर सजा को मुसल्लत करने की ताकत होने के बावजूद, हमें पकड़ने की कुदरत होने के बावजूद, वो हमें पकड़ता नहीं है, वो हमारे साथ हिल्म का मामला करता है, बर्दाश्त करता है हमें, और फिर भी अपनी रहमत की चादर से हमें ढांके रखता है, वरना वो पकड़ने लगता तो कुराने करीम में भी है ये बात कि जमीन पर कोई चलने वाला, कोई जानदार बाकी ना रहता अगर वो पकड़ने लगता, लेकिन वो छोड़े रखता है। क्या फिर हमें उससे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? कि हम गुनाह करते हैं लेकिन वो अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता। कौन है जो इतने चांसेस दे सकता हो? आप बताएं, आप कि अपने ऑफिस के अंदर अगर एक दफा ही कोई गलत काम करें तो देखें फिर अगले दिन फायर कर देंगे। चलो कोई एक दिन बर्दाश्त कर लेगा, एक दफा आपकी गलती को कहेंगे एक्सक्यूज कर दिया, दूसरे दिन भी करें, तीसरे दिन भी करें, चौथे दिन भी करें। कौन होगा जो इतनी बर्दाश्त रखता होगा कि फिर भी आपको काम करने दे? और हम तो दिन में कितनी दफा नाफरमानियां करते हैं, हमें तो एक पल के लिए भी नहीं करनी चाहिए थी। हम कितनी दफा करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, और वो फिर भी चांस दिए जाता है। हम खाने में, पीने में, बोलने चालने, मामलात में कितना गलत कर बैठते हैं, वो फिर भी मौका देता है। इसीलिए हजरत हसन बसरी अल्लाह ताला की तारीफ के ये कलिमात फरमाया करते थे ना, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला हिल्मी का बाद इल्मी का। ए अल्लाह, तेरी सारी तारीफ है कि तू इल्म के बावजूद हिल्म रखता है, इसके बावजूद तू बर्दाश्त करता है। हालांकि तुझे पता है, ये नहीं कि एक होता है ना कि किसी को पता ही ना चले, पता ही नहीं चलता तो इशारा तोड़ के भी कोई निकल सकता है, पता ही ना चले किसी को, कोई देखने वाला नहीं है तो कहीं से कोई कोई चीज भी चुरा लेता है, तो फिर तो इस तरह वो सजा से बच जाता है। लेकिन अल्लाह तुझे तो सब पता है, मेरी दिन रात की हर एक्टिविटी को तू जानता है, मेरी नजर के उठने को जानता है, मेरे दिल के ख्यालात को जानता है, फिर भी तेरा कितना हिल्म है या अल्लाह कि तू पकड़ता नहीं है। वलकल हम्दु आला आफुवी का बादा कुदरतिक। ए अल्लाह ताला, तेरी हम्द है कि कुदरत के बावजूद तेरे पास पावर है कि तू पकड़ ले, उसके बावजूद माफ कर देता। आप देखिए ना, माफ बाज दफा क्यों किया जाता है? कि पकड़ने की कुदरत ही नहीं होती, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आखिर कह देते हैं चलो माफ ही कर दिया। जाहिर है और क्या करेंगे, कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन तेरे पास कुदरत है कि तू पकड़ ले, सजा दे दे, आंखों को अंधा कर दे, जुबान को गूंगा कर दे, आसमान को गिरा दे, जमीन में जलजला भेज दे, लेकिन तू फिर भी माफ करता है। ये होती है ना असल बात, कि किसी के पास ताकत है भी, कुदरत है भी, तब भी माफ कर दे। और ये है ना तारीफ की बात कि इल्म होने के बावजूद कोई जाने दे, तो कितनी बड़ी बात है। इसके ऊपर अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए कि उसने लेट गो किया हुआ है मुझे, मुझे जीने का मौका दे रहा है, मुझे रहने बसने का मौका दे रहा है, मुझे देखने सुनने का मौका दे रहा है, ना आंखों को अंधा करता है, ना कानों को बहरा करता है, ना जिंदगी की ये मोहलत छीन लेता है। फिर हमें अल्लाह ताला इससे इसलिए भी तो मोहब्बत होनी चाहिए कि जब हम तौबा करते हैं तो वो तौबा को कबूल कर लेता है, और ना सिर्फ कबूल कर लेता है, उसके बाद मोहब्बत भी करता है, उसके बाद रहमत भी भेजता है। कितने होंगे ऐसे लोग कि जो किसी को माफ कर दें और उसके बाद फिर उनसे मोहब्बत भी करना शुरू कर दें? अल्लाह ताला तो ऐसा है। तो इसलिए अल्लाह ताला की मोहब्बत को समझें और कोशिश करें हमारे दिलों के अंदर सबसे ज्यादा उसकी मोहब्बत हो, तब आप देखेंगे रात को जागना कोई मुश्किल नहीं। तो हम जब पढ़ते हैं तो अपने असलाफ के बारे में, वो इस तरह, वो तो ये देखते नहीं थे कि ताक रात है कि जुफ्त है, क्या है, इवन है, ऑड है, इसमें जागें कि नहीं जागें, हाय हाय अब सारी रातों में जागना पड़ेगा, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। वो ये नहीं देखते थे, वो बगैर तफरीक के सारी 10 रातों में जागते थे और इबादत करते थे। क्या चीज़ उनको आसान कर देती थी ये सब कुछ? अल्लाह ताला की मोहब्बत ये आसान कर देती। देखिए, माएँ अपने बच्चों के लिए सारी सारी रात नहीं जाग लेती, बच्चा बीमार हो जाए सारी रात माँ एक लम्हे के लिए सो नहीं सकती, क्या चीज होती है? तो इसलिए ये कोई बहुत अचंभे की बात, कोई हैरानगी की बात नहीं है। असल में हमें इसलिए नहीं समझ आती कि दिलों में मोहब्बत है नहीं, सिर्फ दावे हैं। तो मोहब्बत फिर आएगी कैसे? मदारज सालिकीन किताब है, उसके अंदर जो तरीके कुछ बताए गए हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ाने के, और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कही गई है, कुरान करीम को सीखना, समझना, उसमें गौर व फिक्र करना, इससे आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ेगी। जितना ज्यादा आपका कुरान करीम पे गौर व फिक्र बढ़ेगा, जितना इसको फॉलो करेंगे, जितना इसको समझेंगे, उतना ही ज्यादा मोहब्बत का आपके अंदर लेवल बढ़ता जाएगा। और कैसे ना हो, जिससे देखें अब किसी को भी आप मोहब्बत करते हो, उसकी बातें भी तो आपको अच्छी लगती हैं ना, उसको फॉलो भी करते हैं आप, उसके क्लिप्स भी देखते हैं आप, और पसंद करते हैं उसको। तो जो कहते हैं ना कि हमें अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत है, वो उसके कलाम को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, कभी रह ही नहीं सकते। ये माना ही नहीं जा सकता कि कोई कहे मुझे अल्लाह ताला से मोहब्बत है, लेकिन बस उसके कलाम अंदर तो वो, उसके लिए हमारे पास नहीं टाइम। ये कभी हो नहीं सकता, ये दोनों चीज़ें, या तो मोहब्बत नहीं है, वे बात झूठ है, और मोहब्बत होगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके कलाम को इंसान वक्त ना दे, तवज्जो ना दे। तो लिहाजा हम फैसला कर लें कि हमारे दिल में अल्लाह ताला की कोई मोहब्बत है, वो और बढ़ेगी जब कुरान करीम को सीखेंगे तो। लेकिन क्या जो इस वक्त ईमान की हमारी हालत है, तो कहीं ना कहीं तो कोई रमक होगी ना मोहब्बत की। तो अपने आप को कुरान की तरफ लेकर आइए, इस रात की अजमत भी कुरान की वजह से, क्योंकि इसका तारुफ भी इसी से कराया गया, इन्ना अनजलनाहु फी लैलतुल कदर, लैलतुल कदर में हमने इसको नाजिल किया, इस कुरान को यानी। तो इस कुरान की वजह से रात भी सज गई, रात के मर्तबे भी बुलंद हो गए, क्योंकि अजीम शान कलाम अल्लाह ताला का इस रात में उतरा। तो इस महीने में ही सिर्फ कुरान की तरफ नहीं दौड़ना, बल्कि हमेशा इसके बाद भी जिंदगी भर कुरान के साथ वक्त लगाना है। इसके लिए बहुत अच्छा है अगर आप कुरान करीम को सीखने की क्लासेस ज्वाइन कर लें, ताकि डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकें, सीख सकें। क्योंकि जो ही शैतान खुलेंगे, उसके बाद तो यही होगा कि अच्छा फिर अब ये काम है और वो काम है, और इंसान थोड़े दिन में ये असर भी ख़त्म होने शुरू हो जाता है। जो आपने रमज़ान में थोड़ा बहुत कुछ असर लिया था, वो जैसे होता है ना कच्चा रंग, कच्चा रंग एक दफा ही आप उस कपड़े को धोते हैं तो रंग उतर जाता है। तो जब कच्चा रंग चढ़ा होता है, बस यहाँ पे अटेंड कर लिए मैंने, इतने दौरा कुरान अटेंड कर लिए, इतनी दफा कुरान खत्म कर लिया, किसी में भी दिल नहीं लगा, आधा टाइम तो सोते ही रहे, सर से बातें गुजरती गई, फिर वो कच्चे रंग ही चढ़ते हैं, फिर वो फौरन रमजान के बाद उतर जाते हैं। बल्कि रमजान क्या खत्म होने का वेट ही नहीं करते हम, तो आखिरी रोजों में भी रंग उतरना शुरू हो जाता, और चांद रात आई तो फिर तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि हमने कुछ भी सीखा या कुछ लिया। लिहाजा खुद को बांधें, अगर आपको अपने आप से खैर ख्वाही है तो खुद को बांध लीजिए, कि जब कहीं बांध लेंगे खुद को, कहीं ज्वाइन हो जाएंगे तो करना ही होगा। हमारे पास भी कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, आप इनको ज्वाइन कीजिए। और अभी तो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, शुरू से कुरान करीम के साथ अपना सफ़र आज से तहिया कर लें, कि मैंने शुरू से इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम के साथ लग जाना है, और फिर इसको कंटिन्यू रखना है सारी ज़िंदगी। देखिए नियत करने पे भी अजर मिल जाता है, जब इंसान नेकी की नियत करता है ना सिर्फ, उसके पर भी अजर लिखा जाता है। इन रातों में इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती है कि जिंदगी का रुख अगर बदलना चाहते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत का मजा पाना चाहते हैं, तो इन रातों में नियतें ही कर लें। अभी तो कुछ करा नहीं हमने, नियत तो कर लें, या नियत भी नहीं करनी, नियत कर लें कि मैंने जिंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह ताला के कलाम के साथ जुड़े रहना। इस नियत पे इन रातों में जो की गई होगी, वैसे तो हर नियत जो इंसान करता है उसके ऊपर उसके लिए एक नेकी लिख ली जाती है, और वो उस काम को करे तो 10 लिखी जाती हैं। लेकिन इन रातों में अगर आपने नियत कर ली तो सोचे फिर जहां पे हर नेकी हजार महीनों में की गई इबादत से बढ़ के ज्यादा सवाब वाली है, तो ये नियतें कहाँ जाके तुलेंगी। लेकिन देखें, अल्लाह ताला को कोई धोखा नहीं दे सकता, नियत जेन्युइन होनी चाहिए। नियत ऐसी नहीं हो कि चलो अभी तो अजर ले लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। नहीं, अल्लाह ताला के साथ सच्चे रहें, ठीक है, प्योर रहें, अल्लाह ताला के साथ ये हेरा फेरियों वाले काम ना करें। तो आज रात में नियत कर लीजिए, अगर आज लैलतुल कदर हुई तो सोच लें कि नियत पे ही कहाँ से कहाँ तक अजर के पहाड़ लग जाएंगे, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे जितना बढ़ा दे। जितनी आपकी नियत खालिस होगी, जितने आप अंदर से सच्चे होंगे, उतने ही अजर बढ़ जाएंगे। तो नेकियों की नियतें भी करनी है तो इन रातों में कीजिए कि मैं ये करूंगी ये करूंगी, अब मैं ये, अब मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह से बदलना है, मैंने ये गुनाह छोड़ना है। तौबा इस्तिग़फ़ार तो कर रहे हैं, मैंने ये गुनाह छोड़ना है, मैंने फलां नेकी अपनी जिंदगी में लेकर आनी है। तो इरादे बांध लें और अल्लाह ताला से मदद मांगे और कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, मेरी तो कोई हिम्मत नहीं, या अल्लाह मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है, या रब्बल आलमीन तू ही करवा लेना। तो इंसान ने तो एक कदम ही बढ़ाना होता है, ये तो अल्लाह ताला ही है जो थाम लेता है और उसे करवा लेता है, मगर कदम तो आपको पहला रखना पड़ेगा। कम अज कम यहां तक तो पहुंचे, तो डरिए नहीं, आगे बढ़िए। जो इन रातों में और रमजानुल मुबारक में जो नेकी के इरादे ना कर सका, फिर और कौन सा वक्त आएगा, क्योंकि शैतान तो हर वक्त साथ लगा हुआ है, फिर वो आने नहीं देगा। तो इतनी मुबारक घड़ियों में आज नियत करके उठिएगा। आज इंशाल्लाह आपके सामने जो लिंक शेयर हुआ है इसको क्लिक करें और बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों से सबसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपने कलाम से जोड़े रखे, इसको हमारे दिलों की बहार बना दे, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए सकून का बायस बना दे, हमारे दुखों का मदावा बना दे, हमारे हर गम और हम हर फिक्र से आज़ाद करने वाला बना दे। और जब आप कुरान करीम की लज्जत पाएंगे तो फिर आप कभी इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। जिसको इसका मज़ा लग जाए तो अल्लाह ताला के कलाम से बेहतर मज़ा किस चीज़ का हो सकता है। हम लोगों की बातों से हमारा दिल उचाट नहीं होता, और उनके साथ हम कितने कितने घंटों बात करते हैं, और हम कहते हैं हाय दिल कर रहा था कि अभी तो फ़ोन बंद ही ना हो। जो अल्लाह ताला की बात होती है तो सुबहान अल्लाह, फिर तो क्या ही बात है। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपके सामने लिंक है इंशाअल्लाह वो ताला। हम अब अगले सेगमेंट की तरफ अपने चलेंगे, आज हम नेक्स्ट सेगमेंट जिक्र का रखते हैं क्योंकि तो टाइम काफ़ी हो गया। तो इंशाअल्लाह वो ताला हम अपनी सीरीज़ कल करेंगे, तो इसके बाद हम जिक्र करेंगे, और अगर कोई टाइम बचा तो इंशाअल्लाह सीरीज़ की तरफ जाएंगे, वरना आज जिक्र हम उसको टाइम देंगे इंशाअल्लाह वो ताला। तो जितनी देर तक हम दुआ करते हैं उतनी देर आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।